দর্শনের জন্ম বর্ধন অস্তিত্ব অপশয় মৃত্যু সর্বিকা তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং বর্তমানে বলছেন যে বর্তমানে যে মায়াবাদ সে বেশি প্রেতাত্মা এবং অতিথ্য ভেদাভেদ গ্রন্থে তিনি নিঃশুদ্ধ সম্প্রদায় ব্রহ্মমন্ত্র গরীয় সম্প্রদায়ের বিচারটি তিনি স্থাপন করেছেন। কিছু স্বাভাবিক সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মতবাদ সেই সমস্ত মতবাদকে নির্মূল করে তিনি শুদ্ধ বিচারভাবে তিনি স্থাপন করেছেন। প্রেম প্রচার কার্যটি নিদর্শন স্বরূপে শ্রী ভক্তি প্রস্থান কৃষ্ণকৃষ্ণ মহারাজের শ্রী রাধা বিনোদ রাধা বিনোদকে হারে দীর্ঘায় সেবা প্রকাশ দিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি। শ্রী রাধা বিনোদকে হারে সেবা চাষে এমনকি অনেক গরিমন্ত্রের বৈষ্ণবগণ তার সন্ধান সন্ধান হন তারা এইরূপ প্রকাশ করে নতুন কিছু কথনে ভাই এর মধ্যে তারা ভক্তি প্রজ্ঞান কৃষ্ণকৃষ্ণ মহারাজের রাধা বিনোদ পূর্ণ রাধা বিনোদ দেহানি সেবা প্রকাশ থেকে তারা নতুন কিছু করলে নবসৃষ্টি বলে তারা পরিহার করেন। কিন্তু এইরূপ বিচার নয়। তাহলে ছিল পুরীতে পুরী পুরীধাম গোটা করে আছে যে কৃষ্ণ বর্ণা রাধা রানী সেটি তো অত্যন্ত প্রাচীন বিগ্রহ, সেইটি কি নতুন কিছু বলে তারা কল্পনা করেন? এই বিচারটিকে এইরূপ ভাগ্য ধারণাকে নিরাশ করবার জন্য তিনি রাধা বিনোদ ত্যাগী তত্ত্বাত্মকম এটি তিনি রচনা করেছেন। রাধা বিনোদ নিবেচন এত কান্তি বিরোধিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণাঙ্গে রাধা নিহিত বিগ্রহ রাধারানী সর্বদা যে বিনোদের মগ্ন থাকেন সেই রাধা বিনোদে বিহার করতে গিয়ে যিনি শ্রীকান্তি হারিয়েছেন তিনি শ্রী রাধা বিনোদ বিহারে রাধা মহাবের প্রতি সুবলিত যে শ্রীমন মহাপ্রভু যে রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু সেই বিচারটিকে তিনি স্থাপন করতে তিনি রাধা বিনোদ বিহারীকে তিনি প্রকাশ করেছেন। বস্তুত রাধা বিনোদ শ্রীমন মহাপ্রভু যে মূলপতি নিরাকর্ণ ভারতী বিজয় বিগ্রহ সেই জিনিসটি স্থাপন করতে তিনি বিনোদ বিহারীকে প্রবঞ্চিত করেছেন। এই এই এইটি হচ্ছে যথার্থ বিচার এবং সেখানে তিনি অসংখ্য দাবের কথা তিনি বলছেন শেষ করতে কত সম্ভবে দায়িত্ব দেবে সুস্থভাবে বিশ্বমন্ত্রের সর্বস্ব বেদস্থা দিবস তিনি নামি তোমার সত্তম ঘেরা এবং অচিন্তকম সত্যি সত্যি মাতুরত্তম যুগপ বর্ষতে চলা অর্থাৎ এই অভেদত্বকে বজায় রেখে যুগঙ্কিতরে সত্যি সত্যি মানের ভেদত্ব আবার ভেদত্বকে বজায় রেখে তাদের অবেদত্ব এই বিচারটিকে তিনি স্পষ্টরূপে তিনি প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি রাধা বিনোদকে হারিয়ে সেবা প্রকাশটি করেছেন। অনেকে এইরূপ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের তো নিত্য শ্যাম্বল সেখানে শ্রী শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরব প্রাপ্তিত সময় সুতরাং এই প্রকাশটি নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু এই বিচারটি তত্ত্বানুভূতা গাপক সংগ্রহ তাহলে শ্রী জগন্নাথের জীবন গণিত বিধ্বংসী তারা কি সময় বলে কল্পনা করেন অথবা পুরীর চিত্রবর্ণা রাধা তাকে তারা কি দৃষ্টিতে দেখেন? এই বিচার রাধা দামোদরে যে দামবন্ধন বিচিত্র শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে তাদের আধ্যাত্মিক বিচার তারা কি কল্পনা করে? যদি রাধা দামোদরকে বিচার নিতে আমরা গ্রহণ করি তবে রাধা গোবিন্দ রাধা গোপীনাথ রাধা মদন তারা আসছেন কিভাবে? এইরূপ বিচার দ্বারা গৌরী উপলব্ধি উপলব্ধি সম্ভব নয়। বলা চলে সন্ন্যাসের পরে সন্ন্যাসীর পরে আত্ম যে মদনমোহন গোবিন্দ গোপীনাথ তাদের অভিজ্ঞানের সমস্ত এই চিরতত্ত্বের অভিব্যক্তি রাধা রমণে প্রকাশ করেছে বলে গৌড়ীয় মনে হইল। সেই যে রাধা রমণের চরম অবস্থায় যেমন তিনি উপলব্ধি করলেন যে বিষয় বিমর্ষ থেকে আশ্রয় বিমর্ষ এবং প্রতিগুণের শ্রেষ্ঠ সেই আশ্রয় বিমর্ষকে তিনি আস্বাদন বলে যখন সেই ভাবাবিষ্ট হলেন সেই অবস্থাতে তার যে বর্ণকান্তির যে পরিবর্তন সেইটি হচ্ছে শ্রী রাধা বিমর্ষিয়ার। অর্থাৎ রাধা শ্রী রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধা শ্যামচন্দ্র যত বিগ্রহ গণ আছেন তাদের চরম পর্যায়ে শ্রী রাধা বিনোদ বিহারী, এটা কোন সন্দেহ নেই। এবং এই রাধা বিনোদ বিহারী শ্রী কৃষ্ণ পীঠ এবং শ্রী গৌরী এই দুই পীঠের নিত্য যোগসূত্র নতমা কিভাবে সেই কৃষ্ণ পীঠ এবং গৌরীতে সামঞ্জস্য আমরা বৃদ্ধি করি। আজ শ্রী রাধা এবং বিহারী মধ্যস্থলে যিনি নিত্য বিনোদ মঞ্জুরী রূপে অবস্থিত সেই বিনোদ মঞ্জুরী এই দিনে শিল ভক্তি শিল বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী রূপে তিনি আবির্ভূত হন। পরবর্তীতে প্রজ্ঞান ব্রহ্ম প্রজ্ঞান শব্দে যে ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে সেই প্রজ্ঞান প্রজ্ঞান এবং সেই ভক্তির সামঞ্জস্য নীতি স্থাপন করার তিনি ভক্তি প্রজ্ঞান কেশবযুক্ত মহারাজ রূপে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আজ তার আবির্ভাব সেই কিছু উপলক্ষে তার শ্রী চরণে এবং তার অনুসরণ কার ভক্তবৃন্দের চরণে আমার অনন্ত অনন্ত করে ধন্যবাদ তোমার আপনাদের চরণে আমার এই নিবেদন আপনারা প্রার্থনা আপনার এই আগ্রহে প্রার্থনা করুন যাতে প্রভুপাদের বিচার ছাড়া প্রভুপাদ যে কারণে তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই সেই
கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணசை கண்ணனம் குரவே கௌர சங்காய ராதிகாயை கிருஷ்ணாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்த நரம சைவ நரோத்தம் தேவிம் சரஸ்வதிம் தபோ ஜயம். பரமாராத்தம் நித்தலீலா பவித்த ஸ்ரீமன் பக்தி பிரஜான் கேசவஸ்வாமி மகாராஜ் அவிர்வாவ திதிக்கு உபலட்சமே தின் தின் கா ஜாஸ்தி கல் விருந்தாவன उनके अपराधिक जीवन के संबंध में उपदेशों के संबंध में हम लोगों ने कुछ विचार किए सवेरे भी शाम को आज ये उनके संबंध में कुछ हम लोग विचार करें। आप लोग जानते हैं कि उनका आविर्भाव माघ
शुक्ला
शुक्ला तृतीया तृतीया तिथि को बंगाल में हुआ था। माता पिता बड़े धार्मिक थे, उनके पूर्वज भी वैष्णव थे, माता पिता पर धार्मिक थे, बचपन का जीवन भी उसी प्रकार से उनका बीता, कुछ अलौकिक उनके जीवन में सब घटनाएं होती थी, परम सुंदर और बड़े साहसी बलवान ये थे बचपन से ही, इसलिए इनका नाम भीम रख दिया गया। बलवान मोटे ताजे थे और अत्यंत सुंदर थे, इसलिए ज्योत्सना जोना
और जनार्दन भी नाम है, जनार्दन भी नाम,
जनार्दन जनार्दन भी नाम। और प्रभुपाद जी ने इनको, इनका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने दिया विचार करके। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी, हम लोगों ने वृंदावन में ये बताया, होनहार भगवान के वो सची कने पहले से ही ये पता चलता है कि ये कैसे व्यक्ति। बचपन में ये लोग चार भाई थे, ये दूसरे नंबर के, पहले नंबर के थे और लौनी महाराज जी, इनका संन्यास का नाम हुआ था, वो बाग बाजार गौरी मठ के आचार्य थे। जैसे गुरु महाराज जी समिति वेदांत समिति के आचार्य हैं, वैसे ही आचार्य थे, बड़े भारी विद्वान थे, अंग्रेजी बंगला इत्यादि के थे, बहुत सुंदर भाषण भी देते थे, भक्तिता देते थे, भागवत की व्याख्या खूब सुंदर करते थे, विद्वत पुरुषों ने उनका नाम था। और दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर पुलिन बिहारी ब्रह्म पुलिन बिहारी जी थे चतुर्थ, और एक भाई थे वो स्वदेशी आंदोलन में राजनीतिक पार्टी के लीडर, चारों अद्भुत, किंतु चारों में यही सबसे अधिक विचारक थे और माता जी के ऊपर में ये हुए थे, इसलिए माता की इन पर बहुत स्नेह करते। जमींदारी का भाग ये छोटे होने पर भी इन्हीं पर सब दिया जाता, माता जी इन पर विश्वास करती थी और इनका विशेष ध्यान रखती थी। पिताजी जहाँ जाते, कोई धर्म सभा होती, गीता का भागवत का पाठ होता है, तो ये जरूर जीत करते कि मैं चलूंगा, इसलिए पिताजी अब इनकी अंगुली पकड़ करके दूर होता तो अपने कंधे पर बैठा करके और ले जाते और इनको वापस सुनाते। बचपन से धर्म की प्रवृत्ति थी, बड़ी दया थी, दयालुता के लिए मैंने बतलाया, कल वहां बतलाया ये कैसे दयालु थी, ये माँ शाम को रात में लटकिया लेकर के खड़ी थी, तुम कहाँ गया था बतलाओ, रात हो गई, मैं नहीं चाहता कि तुम 6 बजे के बाद में तुम कहीं बाहर में रहो, शासन करती थी। तो एक दिन उनको पकड़ लिया, वो 10 बजे रात में लौटे, अरे बतलाओ तुम कहाँ गया, वो बतला नहीं गए थे, मैया और बिगड़ गई, जरूर कुछ गड़बड़ी, कहाँ तुम था, हमारे लड़कों के साथ में घूमता है या क्या करता है। तो उन्होंने मैया को बतलाया पीछे से, भैया मैं गया था, देर हो गई, एक बुढ़िया है यहाँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर में कुछ नहीं है, बीमार पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं, तुमने हमको जो पैसे जोड़ने के लिए दिए थे खाने के लिए मैंने खाया नहीं, और कुछ इकट्ठा किया समाज से, जिसको कोई जान न सके और रात में इसलिए कि कोई देखे नहीं ये काम कर रहा है, क्योंकि वो लज्जा करेगी, अच्छे घर की लड़की वो है और वो गरीब हो गई है, इसलिए उसको भी निंदा का डर है ना, इसलिए मैं रात में उनके पास में जा करके उसको खाने के लिए व्यवस्था किया, घर घर से कुछ लेकर के दिया और उसकी दवा की व्यवस्था की, डॉक्टर को दिखलाया और उसको किसी प्रकार से रख करके अब मैं आया। बस मैया के आंखों से आंसू निकलने लगा और कही अब से तुमको मैं कुछ दिन नहीं जाटूंगी, उन पर विश्वास हो गया। तो ऐसे वो दयालु पिताजी जहां सभा होती वहीं पर इनको ले जाते और यही सब सुनते। यहां तक कि स्कूल में उस समय में बीए क्लास में चैतन्य चरितामृत ये पाठ्य पुस्तक थी। तो एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर लोग चैतन्य चरितामृत के कुछ प्यारों को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ गलत बतला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे अर्थ नहीं होगा, अपने प्रोफेसरों को उन्होंने समझा करके प्रभुपाद के पास में आए थे, थोड़ा सा संपर्क हो गया था, 16 वर्ष की स्थिति में ही प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा लिया, हरिनाम और दो एक वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ कौन सा तत्व, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, बदंति तत्व विदत तत्व इसी का बंगला प्यार में जी उन्होंने अर्थ किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान तत्व है और जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। अद्वैत ज्ञान पर तत्व किसको कहते हैं और भेदाभेद प्रकार क्या होता है, तटस्थ शक्ति क्या होती है, बिना गुरु से इन चीजों को समझ करके किसी को इसमें तनिक भी प्रवेश नहीं हो सकता। गुरु की बहुत दिन सेवा करे, वैष्णव की सेवा करे तो ये सब समझ में आएगा, अब बिना इन सब समझे तत्व में प्रतिष्ठा नहीं होगी, भजन भी आरंभ नहीं होगा। तो उन्होंने गुरु जी जब उनको नहीं आया तो उन्होंने जब उन्होंने उल्टा सीधा व्याख्या किया तो उन्होंने तर्क कर दिया, पूछा आप पाठ काट करके मत चलिए, अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं बतलाइए, भेदाभेद क्या है, तटस्थ शक्ति क्या है और कृष्ण अद्वैत ज्ञान कैसे होंगे, तो तुम बतलाओ तो बस। विशेष करके इसका विचार उन्होंने दिया है अचिंत भेदाभेद ग्रंथ में, सुंदरानंद विद्या विनोद और ये हरिदास दास, राधा गोविंदनाथ और अनंत वासुदेव जी, ये चार इलेक्टुअल जैन और धर्मराज के गुरु जी कहते थे ये गुंडे हैं, त्रिशूल का त्रिशूल तो ही है गुंडे का, ये छिपा करके कुछ उठकर तुम चोर नहीं हो, नहीं को हटा दिया तुम क्या बाकी हो गया,
चोर हो,
ये तो शास्त्र में लिखा तुम चोर हो, ऐसे ही शास्त्रों की बातों को छिपा करके उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ अध्ययन किया। सुंदरानंद विद्या विनोद जी के बहुत विद्वान आदमी, बहुत से पुस्तकों को लिखा, गुरु जी ने कहा कि जब तक वो प्रभुपाद जी के आश्रय में थे तब तक तो ठीक लिखा उन्होंने, और जब प्रभुपाद जी का अंकुश हट गया शिष्टाचारी हो गए और गुरु जी को भी छोड़ करके बाबा जी सहजिया बाबा जी से हो गए, तब निरंकुश होकर के उन्होंने अंत संत गड़बड़ सब लिखा। वेदांत हमारे भागवत में लिखा है वदन्ति तत्सत्तम यज्ञानम अद्वयम, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व और अद्वैत बाद एक नहीं है। सुंदरानंद विद्या विनोद ने यह कहा कि कृष्ण भागवत जो है अद्वैत ज्ञान पर तत्व को स्वीकार करती है,
और इसी का प्रतिपादन करती है। अद्वैत ज्ञान माना था न द्वय इसी अद्वय, क्या दो अर्थात अद्वैत है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय महाप्रभु जी का संप्रदाय अद्वैतवादियों के निकट में है। तुम लोग समझो नहीं तो तुम लोग पढ़ने से भी नहीं समझेगा, लिखो पीछे समझो अने तो भरंडा भागेगा। तो उन्होंने ये बतलाया न द्वैत इति अद्वैत, न द्वय इति, इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग अद्वैत ज्ञान को भागवत का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। दो नहीं आता तो एक है, कृष्ण एक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वेन्द्रपुरी पर जो कि अद्वैतवादी सन्यासी थे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, और उनके जितने परिकर थे उन लोगों सब ने अद्वैत मत नहीं लिया। महाप्रभु जी ने स्वयं अद्वैत मत के केशव भारती से संन्यास लिया। यहां तक कि इस माधवेन्द्रपुरी भक्त होने पर भी उन्होंने संन्यास लिया अद्वैतवादी से। यहां तक कि मध्वाचार्य ने भी अद्वैत साधु से संन्यास लिया। अद्वैताचार्य इत्यादि सब अद्वैत अद्वैत संप्रदाय के ये सब निकट में है, इसलिए हम लोग अद्वैत ज्ञान का अद्वैत ज्ञान पर गुरु जी ने कहा कि ये पाप अंदर है। ऊपर से जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं समझेंगे, तत्व के भीतर नहीं प्रवेश करेंगे, वो तो कहेंगे सचमुच से तो अद्वैत ज्ञान पर तत्व। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा कि हम अचिंत भेदाभेदवादी हैं, ये किसका मत, भागवत का मत नहीं है, तो महाप्रभु जी ने इसको क्यों स्वीकार किया। इसलिए श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय अचिंत भेदाभेद है, यह समझो, अद्वैत ज्ञान नहीं है। अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य यहां न द्वितीय, अद्वितीय का तात्पर्य है उनके समान कोई नहीं है, ये अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य असमोर्ध असम ऊर्ध असमोर्ध, ये नाम है अद्वैत ज्ञान का। महाप्रभु जी ने नहीं कहा कि हम अद्वैतवादी हैं, तो यह अचिंत भेदाभेद बात किसका है, हमारे जी गोस्वामी का विचार क्या है, अचिंत भेदाभेद है ना अद्वैत ज्ञान है। तो फिर अचिंत भेदाभेद यदि अद्वैत ज्ञान ही भागवत का ये तात्पर्य है तो ये कहां से आई लोगों ने, तो अशास्त्रीय विचार का इन्होंने अनुमोदन किया है या प्रचार किया अचिंत भेदाभेद। इसलिए सुन रहा नाम का ऊपर से नीचे कहना तक और वो जितने हैं जिनका नाम अभी तक लिया सात विरोधी हैं महाप्रभु अचिंत भेदाभेद, क्योंकि श्रीमद् भागवत में अचिंत भेदाभेद का बात लिखा है और गीता में भी अचिंत भेदाभेद, समस्त शास्त्रों में अचिंत भेदाभेद। वेद का यह अंश व्यवहारिक है और यह पारमार्थिक है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जैसे तुम हो मैं हूं वह, ये तो शास्त्रों में सर्वत्र है। तत्त्वम् अस्ति, ये तम शब्द आया कहां से, यदि है ही नहीं है एक ही तत्व है तो ये वेद तो सत्य है ना, वेद को तो सभी से ये कहां से है,
तम शब्द कहां से,
तम कहां से आया, अब किसको कह रहा है सब, तो ये कहां से आया। इसलिए अद्वैत बात ही नहीं है कोई, अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि एक ही पर है, अद्वैत का तात्पर्य असमोर्ध अलौकिक असमोर्ध सहस्त्र शक्ति युक्त शक्ति युक्त पराशक्ति विधेय सूर्य के, नित्यो नित्यानंद है। यहाँ पर नित्य नित्यों का भी परम नित्य है, बहुत से नित्य को स्वीकार किया और तब उनमें भी परम तत्व को स्वीकार किया। गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम और परम पुरुषोत्तम ये सब ऐसा क्यों वर्णन किया और बतलाया ये उन सब में मैं ही जो कोई मुझे जानेगा माँ में एव प्रपद्यन्ते ताम माया नेताम सर्वधर्मान प्रत्येक माँ में एकम ऐसे कहते हैं माँ में एकम किसको कह रहे हैं झूठे को जो झूठे लोग वहां पर थे अर्जुन झूठा है इसलिए नहीं बहुतों में जो सबसे सर्वोत्तम है उसको अद्वितीय अथवा अद्वैज्ञान जिसमें सभी हैं
बहुत।
इसलिए भागवत का तात्पर्य अचिंत भेदावेद है, गीता का तात्पर्य वेदों का वेदांत का उपनिषद सबका तात्पर्य है क्या
अचिंत भेद,
क्योंकि वेद के समस्त पक्षों की पुष्टि इससे होती है। वेद में दो तरह के विचार हैं, भगवान की शक्ति भगवान से भगवान की शक्ति और शक्ति से परिणत जो वस्तुएं हैं जीव और जगत का भगवान के साथ में भेद भी है। यह अचिंत भेद वेद में बतलाया जैसे बतलाया नित्यो नित्यानंद गौ सपर्णा साइजो सखाया एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक पक्षी जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा का साक्षी है, वो सब देखता है क्या ये कर रहा है और जीव फल चखता है क्या फल अपने अच्छे गुरु कर्मों का फल चखता है। प्रभु चखता नहीं है वो क्या करता है साक्षी के रूप में देखता है कि ये क्या कर रहा है। तो ये दोनों दो हुए ऐसे हजारों सब मिलेंगे। और ये भी लिखा है सर्वमुखालंबितं ब्रह्मा सभी ब्रह्म ऐसा भी लिखा ऐसे बहुत से हजारों सब मिलेंगे एको
एको हम बहुश्याम
बहुश्याम ऐसा भी लिखा गया। स ऐक्षत उन्होंने इच्छा की और ये जगत और जीव हुआ। इसलिए अद्वैत नहीं है ये दोनों को मिलाकर के वेद के सभी अंश ही सत्य है, उसमें कोई भी झूठ और व्यावहारिक नहीं है, सभी पारमार्थिक सत्य है किंतु उनमें तारतम्य है। जैसे हम लोगों में कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई बुद्धि में कोई अकल में कोई कुछ में कोई शारीरिक बल में, सब में तारतम्य है। उसी प्रकार से तारतम्य वहां पर स्वीकार सभी एक अद्वैत खिचड़ी निर्विशेष निराकार नहीं, ये अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य उसी के अंदर में उनकी शक्ति और शक्ति परिणत समस्त जीव और जगत सबके साथ में प्रभु का कृष्ण का भेद भी है किंतु कैसा है अचिंत। मानव मेधा के द्वारा अपनी शक्ति से नहीं होगा, वेद बुद्धि कम में है। वेद बुद्धि माने गुरु परंपरा से जो विचार आ रहे हैं उसका अनुसरण करने पर हम देख सकेंगे ये ऐसा होता है और कोई स्वतंत्र सोचे यदि अचिंत माने एकदम कुछ चिंता नहीं किया जाता ऐसा। इसलिए ये सब विचारों को कौन सुनेगा कौन बतलाएगा, स्कूल कॉलेज में ये होगा। इसलिए गुरु महाराज जब कोई ऐसे सुंदर स्पष्ट करके जब उनको समझाने लगे वो देखते रह गए इनके यहाँ हमको क्या पढ़ना है, बस कजरी जानते करके प्रभु पाद के चरण कमल विद्या वही विद्या किसको कहते हैं भागवतावधि
भगवतावधि
अथवा सर्वमति विद्या जिसके द्वारा भगवान के चरण मति है। इनसे गुरु जी से हम अपने पढ़ेंगे, इनसे क्या हम पढ़ेंगे, ये तो हमारे छात्र भी होने लायक है इसलिए छोड़ करके चले जाए। जब वहां आए तो प्रभुपाद जी ने कहा जिसे वो आए थे अपनी पिसी माँ के साथ हम लोगों ने स्टेज साइड देखा होगा, हाँ तुम्हें देखे
और कोई यदि होगा पुराना आदमी तो देखा ये भी देखे होंगे कि नहीं याद नहीं फिर सही देखे थे। बड़ी विदेशी महिला थी, बहुत विदेशी महिला, साथ साथ में कविता बनाती थी। गुरु जी परिक्रमा जा रहे हैं और उनका लिखना हो चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर कैसे दर्शन किया कराया था, तो वही छोटे से बच्चे 16 वर्ष के बच्चे को ले आई थी, वही इनको हरि कथा पहले सुनाती थी। अंततः गुरु महाराज जी उन्हें बड़ी किए रखते थे, उनकी सेवा कर रहे हैं अंत तक हम लोग सब लोग। तो वो इनको लेकर के प्रभुपाद जी के आई या प्रभुपाद के चरण में इनको समर्पित कर दिया। तो प्रभुपाद जी उस समय कहते थे कि हम अभी एक भी मठ नहीं था केवल मायापुर में। उन्होंने कहा कि 9 द्वीप में 9 हम मठ करेंगे और भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े शहर हैं सब जगह में हम प्रचार केंद्र करेंगे और वहीं से सब जगह पृथ्वी भर में प्रचार करेंगे भगवान का, कीर्तन का, ना चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का और कीर्तन का प्रचार करेंगे हम विश्व भर में। इन्होंने कभी भी मठ तट और जमीन खरीद करके नहीं बनाया। जिस प्रकार से हो किराए में रखा, प्रभुपाद जब तक थे अधिकांश किराए में ही थे, क्यों लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वहीं से प्रचार होगा। तो ऐसी जब तक भावना थी निस्वार्थ भाव से सब लोग रह करके खूब प्रचार करते। गुरु महाराज जी क्या करते थे, जब मठ में आए पढ़े लिखे लड़के, जमींदार घर के लड़के, परम कोमल शरीर इनका, और वो बिना जूता बिना किसी चीज के बिना छाता सवेरे भोर में अन्न चावल माने उसी को गीला बना दिया जाता भारी अन्न और उसमें नमक देकर के खा लिया। कभी उसमें साग भी उसमें मिला देते, कभी कुछ और दे देते, इसी तरह से कभी आलू उसमें दे देते और सवेरे खा करके निकल जाते बक्सा लेकर के लकड़ी का और कुंजी रहती प्रभुपाद जी के पास में सबकी। और प्रभुपाद ने कहा 2 पैसे 4 पैसे एक आना से अधिक मत लेना किसी से, बस 1 पैसा 2 पैसा जो डालेगा बस वैसा ही। और ऐसे नहीं महाप्रभु जी के कथा सुनाना जी कहां से तुम लोग आए हो, मायापुर से आए हो या कहां से गौरी मठ से आए, किस लिए हम लोग ले जा रहे हैं, एक बात कृष्ण नाम कीजिए, कृष्ण नाम का क्या महात्मा है, भक्ति किसको कहते हैं, इसलिए लोगों से संपर्क होगा और प्रचार होगा और मान अभिमान दूर होगा। तो गुरु जी जाते थे, एक दिन प्रभुपाद अपने प्यारी लाल ड्राइवर माने ब्रह्मचारी से प्रभुपाद का ड्राइविंग करते, तो वो दोपहर में कहीं काम से जा रहे थे कलकत्ते में गड़ेरमा जहाँ पर कि किला है अंग्रेजों का द्वारा स्थापित किया हुआ बहुत बड़ा भारी महल है, उसमें एक बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर में 12 बजे दोपहरी में और जेठ के महीने में एक पेड़ की जड़ पर वो बक्सा रख करके उसी के ऊपर में सीट दे करके और ऐसे ही विश्राम कर रहे थे गुरु जी। 16-17 वर्ष के बच्चे 18 वर्ष प्रभुपाद जी ने देखा प्यारी लाल ने बस अरे देखो विनोद 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 सो रहा है। प्रभुपाद जी ने देखा चले गए कि तो फिर शाम को आकर के वही देखकर के इनकी विशेष कृपा हुई। जैसे यशोदा जी का परिश्रम देकर के कृष्ण द्रवित हो जाते हैं, कृपा कब होती है, किसी की एकांतिकता देकर के, गुरु सेवा में। गुरु सेवा में ने क्या, ये भगवान की कथाओं का प्रचार, गुरु जी का पैर दबा रहे थे ना, गुरु जी को खिला रहे हैं, किंतु गुरु जी के इसके लिए ऐसे कोमल शिशु बच्चे अभी और इस प्रकार से दोपहर में धूप में खिलखिलाती हुई धूप और उसमें बिना खाए गुरु क्यों नहीं दया करेगा उन पर, अवश्य करता है। ऐसे ही कृपा को ग्रहण करने के लिए शक्ति चाहिए, कठोर परिश्रम भी चाहिए।
एक समय में इनको कोई उतना नहीं जानते थे, जो ये पढ़े लिखे और विद्वान आदमी और खूब मेधा युक्त हैं, साधारण समझते थे लोग, किंतु सभी लोग जानते थे ये अलौकिक बालक, सभी बड़े डरते थे। परमानंद प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य दोनों एक सम वयस्क, परमानंद प्रभु जी की उम्र इनसे 4-5 वर्ष बड़ी ही होगी, किंतु दोनों में लंगोटिया याद जैसा भाव, एक ही खाना पर सोना, कभी एक साल में भी खा लेना, ऐसे उनके आप प्रभुपाद जी की सेवा करते थे और तू कड़ाका परस्पर करते थे, और प्रभुपाद जी इनको तुमी तुई करते थे दोनों को। और वो ऐसे थे, रात में यदि कहीं किसी काम में गए हैं 12 बजे रात में लौटे, प्रभुपाद प्रभुपाद खोलो प्रभुपाद खोलो, धक्का दिए जोर कर दिए और सब लोग धक्का, ये क्या कर रहा है, प्रभुपाद जी को उठा रहा है सो रहे हैं, और वो मानेगा नहीं, जोर जबरदस्ती कर करके अभी सो रहे हैं इसे कहते उठा करके, तब फिर जाकर के घर में सब ठीक ठाक कर करके प्रभुपाद का मसहरी लगाना और सब काम यदि ठीक है देख सुन करके तब फिर आ रहा है। हम लोग तो कितना डरेंगे, किंतु उनकी सेवा के लिए आया। यदि किसी को पैसे की जरूरत है तो प्रभुपाद जी सहज ही पैसा नहीं देते थे किसी को, बड़ी मुश्किल से देते थे, जानते थे कि पैसा को रोजगार करना सहज है किंतु पैसे को परमात्मा में खर्च करना बड़ा कठिन है, पैसे को खर्च करके नरक में लोग जाए, एक ही पैसा कहां से कितना कष्ट करके लाया है, इसको कैसे परमात्मा ही केवल हम करेंगे इसका कल्याण हो, इसलिए सहज ही नहीं देते, तो नहीं देते थे, और जरूरत है तो जाकर के परमानंद प्रभु से लोग कहते थे प्रभु प्रभुपाद तो दिवे ना आपने पूछे प्रभुपाद कहते थे कि नहीं हमारे लिए, तो कहते थे प्रभु 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 अरे पचहत्तर दिए देना फिर ये देना भले ये दे मैंने दे दीजिए, अरे तुम चुपता था, तो अंत में जब प्रभुपाद जी दे दे ठीक है, नहीं दिया यदि किसी कारण से तो बस झट पॉकेट में हाथ निकाल करके और पैसा ले लिया और लेकर के और जाओ, ऐसे उनके मुंह लग गए और बड़े प्रिय थे। तो प्रभुपाद जी का नियम था, यदि किसी ब्रह्मचारियों में कोई मनोमालिन्य हो गया तो हर एकादशी को या कब कुछ मीटिंग कराते थे और उसमें सब ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों को बुलाते थे और इनके गुण के संबंध में कुछ बोलिए, ऐसा करते थे। जैसे किसी दो लड़कों में लग गया, उन्होंने कहा तुम इनके संबंध में बोलो और उसको कहे तुम इनके संबंध में बोलो, तो उस समय तो भरी सभा है, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी और ब्रह्मचारी सब लोग हैं, उस समय अवगुण की तो बात कर नहीं सकते, केवल गुण की ही बात कर, तो उसने हमारे लिए इतना कह रहा है, तो वो भी अब अच्छी तरह से उसके संबंध में बतलाया, तो दोनों में गुण वर्णन करने से ऐसा ही होता है। तो एक दिन किसी कारण से गुरु जी को कहा जैसे तुम परमानंद के संबंध में बोलो तो कुछ, तो गुरु महाराज जी ने, ये वैदांतिक पंडित थे अभी कोई जानते नहीं थे, अब उसी दिन से प्रकाश हुआ, तो उन्होंने वो प्रणाम मंत्र कहा पहले परमानंद माधव करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जप कृपा तमहं परमानंद माधव, परमानंद माधव हो गया ना, अच्छा ये परमानंद माधव के दास हैं, इनका स्वरूप है। माधव को कैसे प्रसन्न किया जाता है, माधव के प्रतिनिधि हैं, उनको कैसे प्रसन्न करना किया जाता है ये जानते हैं, इसलिए ये परमानंद दास है। कैसे परमानंद दास हुए, अहो भक्तम महो भक्तम नंद गो प्रजौषाम जनमित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म
परमानंद आई
जो भी इसको श्लोक कह रहे हैं ना, जो जो ब्रह्म सूत्र कह रहे हैं
आनंदमयो
अभ्यास परमानंदमयो अभ्यास, ऐसे सब दे करके उन्होंने 8 घंटे तक बहुत सुंदर रूप में सूक्ष्म रूप में वैदांतिक भाषा में उनका परिचय दिया। बात थे और सब लोग बड़े आश्चर्य थे, कभी पढ़ता नहीं है लिखता नहीं है और इतने कहां से ये सब ये किया, सब लोग आश्चर्य। तो प्रभुपाद ने इनके ये सब दे करके उनकी उपाधि दी कृति रत्न, कृतियों में भी रत्न है ये, उनका उपाधि दिया, बहुत ही सुंदर नाम दिया। तो विद्या क्या विनोद बिहारी कृति रत्न उनका नाम और वेदांत की जितनी भी पुस्तकें थी उन्होंने कहा ये सब तुम ले जाओ, ये तुम पढ़ना और तुम अपने पास में रखना, किसी को मत देना। तो ये सब पुस्तकें प्रभुपाद ने खुद उनको दे और वेदांत के ऊपर में इनको बीच बीच में कहते थे कुछ लिखने के लिए, तो उस समय पत्रिकाओं में छपता था। उसी समय उन्हीं के प्रभुपाद जी के करुणा से स्फूर्ति से उन्होंने उसी समय में यह लिखा था मायावाद का जीवन जन वैष्णव विजय, उसी समय में लिखा। उसको देख करके बड़े बड़े विद्वान लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा अनुपम ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसमें यह दिया है जितने असुर लोग थे वो अद्वैतवादी थे, इसलिए शंकर भी अब उसी से ही है। ये बौद्ध जितने हैं असुर हैं, हिरण्यकश्यप को पहला नंबर का अद्वैतवादी और उसी का वंशज हुआ रावण, ये प्रधान उस समय अपने समय में अद्वैतवादी लंका अवतार सूत्र उसने लिखा था अद्वैतवाद के सूत्र, और उसी को गौड़पाद जी स्थापित किया अपनी उपनिषद है वो कौन सा है उसी की कारिका में, मांडुक्य उपनिषद की कारिका। कारिका किसको कहते हैं, कारिका किसको कहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो कुछ भाव होते थे स्वरूप दामोदर अपने संस्कृत भाषा में श्लोकाकार में लिख देते थे, इसको कहते हैं कारिका ना? उसी प्रकार से मंडूक का जो उपनिषद है उसी की कारिका उन्होंने बनाई, किसने,
गौड़पाद ने,
उसी को शंकराचार्य ने उसका
छत्र से खंड
उसकी नहीं उसकी व्याख्या की, व्याख्या जैसे उनका क्या तात्पर्य, क्या तात्पर्य है, और अपने गुरु जी को दिखलाया
गोविंदपाद
को। गुरु जी कहते हैं यदि मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता तो गौड़पाद जी जो इनके परम गुरु थे उनकी मांडुक्य कारिका पर उन्होंने जो व्याख्या ली थी शंकर ने, उसको देख करके गोविंदपाद और गौड़पाद दोनों ने आशीर्वाद दिया ये कैसे संभव हुआ, तो मुक्ति से मिल गए तो फिर आए कैसे, आया समझ में क्या मुक्ति पाते हैं संपूर्ण रूप से ब्रह्म में मिल जाना निर्विधि, ब्रह्म हो गया। यदि वो ब्रह्म हो गए तो फिर उस कारिका की व्याख्या देखने के लिए गोविंदपाद और गौड़पाद आए तो आए तो उनकी मुक्ति नहीं और शंकर की भी मुक्ति नहीं, और ये तीनों भी असुर श्रेणी में है क्योंकि रावण की परंपरा में है और वो बक्र अष्टावक्र इत्यादि की श्रेणी में ये लोग हैं। इसलिए गुरु जी ने उस पुस्तक में ये दिखलाया कि आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है कोई वैष्णव अद्वैतवादी हुआ, किंतु जितने अद्वैतवादी थे वो परास्त होकर के पीछे से वैष्णव धर्म अधिकांश लोगों ने ग्रहण किया है, विशेष करके ब्रह्मवादी सनक सनंदन और सुखदेव गोस्वामी और भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब लोग कोई भी वैष्णव को शंकराचार्य ने हराया हो अपने दिग्विजय के समय ऐसा कहीं उल्लेख नहीं, किसको हराया, केवल कर्मियों को, ज्ञानियों को, बौद्धों को और सांख्य जो और कर्म मीमांसा इनको हराया। किसी वैष्णव के पास में नहीं गए, वृंदावन में आए थे और भागवत पर कुछ लिखना चाहा, ये भागवत से कुछ श्लोकों को लेकर के हम अद्वैत की सिद्धि करेंगे, जैसे वेदांत के सूत्रों का उल्टा अर्थ कर दिया। तत्त्वम असि, तुम भी वही हो, किंतु इसका अर्थ है तत्त्वम असि तुम उनके सेवक हो, ये अर्थ है, तो उसका उल्टा अर्थ बना दिया। ऐसे ही सब अर्थों का कदर्थ किया है? किंतु भागवत पर जब यहाँ पर वृंदावन में आए तो उनको कहीं से सुनाई पड़ा, वृंदावन में अधिक दिन मत रहो, भागवत पर कलम मत उठाना, भागवत भगवान का कृष्ण का ये शरीर है, इसकी अंग है। वेदांत को लिया वो ठीक है, उपनिषदों को लेकर के उसका कदर किया, किंतु भागवत के ऊपर में कभी भी हस्तक्षेप मत करना, इसलिए उस पर उन्होंने कलम नहीं उठाई। बल्कि गोविंदम भज, गोविंदम भज, गोविंदम भज मूढ़मते, ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह से गुरु महाराज जी उस ग्रंथ में ऐसा ही उन्होंने किया। और अचिंत भेदादि ग्रंथ में अद्वैत, अभी जो अद्वैत ज्ञान तत्व को बतलाया ना, इस प्रकार से खंडन किया, नहीं तो तुम लोगों की बुद्धि भी यदि वो पढ़ेगा सुंदरानंद का पुस्तक में सचमुच में मालूम होगा। हम भी पहले जब पढ़े तो ऐसे मालूम हुआ, किंतु गुरु महाराज जी का जबकि ये एक्सप्लेनेशन जब सुना, समझ का रही है ऐसे।